अक्टूबर 2019 की पहली दुर्ग 1919 सौ साल पहले। पहला विश्व युद्ध पिछले 4 साल से चल रहा था, फिर 1918 के आखिर में राष्ट्रों ने युद्ध करना बंद कर दिया। 18 जनवरी 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन की शुरुआत हुई। नतीजा ये हुआ कि 28 जून 1919 को जर्मनी और दूसरे राष्ट्रों के बीच वर्साय की संधि की गई। इससे पहला विश्व युद्ध खत्म हो गया। वर्साय की संधि से एक नए संगठन की स्थापना हुई जो राष्ट्र संघ कहलाया। इसका मकसद था राष्ट्रों को बढ़ावा देना कि वो एक दूसरे को सहयोग दे और पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा लाए। कई चर्चों ने राष्ट्र संघ का साथ दिया। अमेरिका के अलग अलग चर्च के अगुओं ने कहा कि ये राजनीतिक संगठन पृथ्वी पर परमेश्वर के राज को दर्शाता है। उन्होंने इसका समर्थन करने के लिए अपनी तरफ से कुछ लोगों को पेरिस शांति सम्मेलन में हाजिर होने के लिए भेजा। उनमें से एक व्यक्ति ने सम्मेलन के बारे में कहा, इंसान के इतिहास में यह एक नए युग की शुरुआत है। बेशक एक नए युग की शुरुआत हुई, मगर यह उन लोगों ने नहीं की जो शांति सम्मेलन में हाजिर हुए थे। इसकी शुरुआत यहोवा ने की। सन 1919 से उसने अपने लोगों को पहले से कहीं बढ़कर प्रचार करने की ताकत दी, मगर इससे पहले बाइबल विद्यार्थियों को कुछ मुश्किलें पार करनी थीं। एक मुश्किल फैसला। शनिवार 4 जनवरी 1919 को वॉचटावर बाइबल एंड ट्रैक्ट सोसाइटी के निर्देशकों का सालाना चुनाव होने वाला था। उस वक्त भाई जोसेफ एफ रदरफोर्ड यहोवा के लोगों की अगुवाई कर रहे थे, लेकिन उन पर और 7 और भाइयों पर गलत इल्जाम लगाए गए और उन्हें अमेरिका के एटलांटा शहर की जेल में डाल दिया गया। अब सवाल था कि क्या उन भाइयों को अगुवाई करने के लिए दोबारा चुना जाना चाहिए या फिर दूसरे भाइयों को उनकी जगह लेनी चाहिए। जेल में भाई रदरफोर्ड को इस बात की चिंता हो रही थी कि संगठन का काम आगे कैसे बढ़ेगा। कुछ भाइयों को लगता था कि किसी और भाई को अध्यक्ष चुना जाना चाहिए। ये बात भाई रदरफोर्ड अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने उन भाइयों को एक खत लिखा जो चुनाव के लिए इकट्ठा हुए थे। खत में उन्होंने भाई इवांडर जे कॉवर्ट को अध्यक्ष बनाने की सिफारिश की। भाई कॉवर्ट के बारे में भाई रदरफोर्ड का कहना था कि वो शांत, सूझबूझ से काम लेने वाले और प्रभु के वफादार हैं, लेकिन दूसरे भाइयों का सोचना था कि चुनाव 6 महीने बाद रखा जाना चाहिए। जिन भाइयों ने भाई रदरफोर्ड और उनके साथियों का मुकदमा लड़ा था, उनका भी यही मानना था। चर्चा के दौरान माहौल काफी तनाव भरा हो गया। भाई रिचर्ड एच बार्बर भी वहां मौजूद थे। उन्होंने बाद में बताया कि जब ये बहस हो रही थी तो अचानक एक भाई ने कुछ ऐसा कहा जिससे सब शांत हो गए। उसने कहा, मैं वकील तो नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि वफा निभाना क्या होता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वफादार रहें। उसके वफादार रहने का सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि हम चुनाव रखें और भाई रदरफोर्ड को दोबारा अध्यक्ष बनाएं। भाई रदरफोर्ड के साथ कैद भाई एएच मैकमिलन याद करते हैं कि अगले दिन क्या हुआ। भाई रदरफोर्ड ने जेल की अपनी कोठरी से भाई मैकमिलन को आवाज लगाई और कहा, जरा अपना हाथ बाहर निकालना। उन्होंने भाई मैकमिलन को एक तार थमाया जो भाइयों ने भेजा था। उसमें बताया गया था कि चुनाव का क्या नतीजा निकला है। भाई मैकमिलन तार पढ़ते ही समझ गए कि सारे निर्देशकों को दोबारा चुना गया है और भाई जोसेफ रदरफोर्ड और भाई विलियम वैन एम्बर्ग अपने पद पर बने रहेंगे। इसका मतलब था कि भाई रदरफोर्ड अध्यक्ष के तौर पर सेवा करते रहेंगे। रिहा हुए। इन 8 भाइयों को जेल से रिहा करने के लिए बाइबल विद्यार्थियों ने सरकार से अपील करने का फैसला किया। उन्होंने एक याचिका पत्र तैयार किया और लोगों से उस पर दस्तखत करने को कहा। ये काम आसान नहीं था, इसके लिए हिम्मत चाहिए थी। नतीजा क्या हुआ? याचिका पत्र पर 7 लाख से भी ज्यादा लोगों ने दस्तखत किए, मगर इससे पहले कि बाइबल विद्यार्थी याचिका पत्र दायर करते, बुधवार 26 मार्च 1919 को भाई रदरफोर्ड और दूसरे जिम्मेदार भाइयों को जेल से रिहा कर दिया गया। बाइबल विद्यार्थियों ने खुशी से भाई रदरफोर्ड का स्वागत किया। उस मौके पर भाई ने कहा, मुझे यकीन है कि हम जिन हालात से गुजरे वो दरअसल हमें आने वाले मुश्किल दौर का सामना करने के लिए तैयार कर रहे थे। आप लोगों ने ये लड़ाई हमारे लिए नहीं लड़ी। हमारी रिहाई सबसे जरूरी बात नहीं थी। आपने यहोवा के लिए ये लड़ाई लड़ी ताकि उसकी महिमा हो, और इसके लिए आपको लाजवाब आशीषें मिली हैं। हमारे भाइयों के मुकदमे का जो नतीजा निकला उससे पता चलता है कि इसके पीछे यहोवा का हाथ था। 14 मई 1919 को अदालत ने यह फैसला सुनाया। इन आरोपियों को हक था कि इनके मुकदमे की सुनवाई बिना पक्षपात के हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस वजह से ये अदालत इस मुकदमे को खारिज करती है। देखा जाए तो भाइयों पर बड़े बड़े अपराधों का इल्जाम लगाया गया था। अगर अदालत उनकी सजा माफ कर देती या फिर सजा कम कर देती तब भी वो अपराधी माने जाते, लेकिन उनका मुकदमा वापस ले लिया गया और उन्हें सभी इल्जामों से बाइज्जत बरी कर दिया गया। कानून की नजर में वो अपराधी नहीं थे। इस वजह से जज रदरफोर्ड रिहा होने के बाद अपनी वकालत जारी रख पाए। उन्होंने अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय में कई बार हमारे भाइयों की तरफ से मुकदमे लड़े। उन्होंने प्रचार करने की ठान ली। भाई मैकमिलन ने बताया, हमें उस वक्त का इंतजार था जब प्रभु हमें स्वर्ग ले जाता, लेकिन तब तक हम हाथ पर हाथ धरे बैठने वाले नहीं थे। हमें एहसास हो गया था कि प्रभु की मर्जी जानने के लिए हमें कुछ करना होगा। लेकिन एक दिक्कत थी। जब हमारे भाई जेल में कैद थे तो प्रकाशनों की छपाई में इस्तेमाल होने वाली सारी प्रिंटिंग प्लेट्स नष्ट हो गई थी। इस वजह से मुख्यालय के भाई तुरंत वो काम शुरू नहीं कर पाए जो वो सालों से कर रहे थे। कुछ भाई सोचने लगे कि शायद अब प्रचार काम जारी नहीं रहेगा। क्या अब भी लोगों को बाइबल विद्यार्थियों के संदेश में दिलचस्पी थी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए भाई रदरफोर्ड ने एक भाषण देने का फैसला किया। इसमें सब लोगों को बुलाया जाता। भाई मैकमिलन ने बताया, अगर इस सभा में एक भी व्यक्ति नहीं आता तो हम समझ जाते कि यह प्रचार काम खत्म हो चुका है। रविवार 4 मई 1919 को कैलिफोर्निया के लॉस एंजेलिस शहर में वो भाषण दिया गया जिसका विषय था दुख से पीड़ित लोगों के लिए आशा। भाई रदरफोर्ड बहुत बीमार रहते थे, फिर भी उन्होंने वो भाषण दिया। करीब 3,500 लोग हाजिर हुए। सैकड़ों और लोग आए, लेकिन उन्हें वापस भेजा गया क्योंकि बैठने की जगह नहीं थी। अगले दिन 1,500 लोग ये भाषण सुनने आए। भाइयों को उनके सवाल का जवाब मिल गया था। लोगों को अब भी राज के संदेश में दिलचस्पी थी। इसके बाद भाइयों ने जो कदम उठाया उसी मिसाल पर चलकर आज यहोवा के साक्षी प्रचार का काम करते हैं। आगे होने वाली बढ़ोतरी के लिए तैयार हुए। 1 अगस्त 1919 के प्रहेदुर्ग में बताया गया कि सितंबर की शुरुआत में ओहायो राज्य के सीडर पॉइंट में एक अधिवेशन रखा जाएगा। मिजूरी राज्य के रहने वाले एक जवान बाइबल विद्यार्थी क्लेरेंस पी बीटी का कहना था, हर किसी को लगा कि उसे वहां जाना चाहिए। अधिवेशन में 6,000 से भी ज्यादा भाई बहन आए। किसी ने सोचा नहीं था कि इतने सारे लोग हाजिर होंगे। और तो और, हाजिर लोगों का जोश तब और बढ़ गया जब पास की इरी झील में 200 से ज्यादा लोगों ने बपतिस्मा लिया। अधिवेशन के पांचवें दिन 5 सितंबर 1919 को भाई रदरफोर्ड ने एक भाषण दिया जिसका विषय था सहकर्मियों के लिए संदेश। भाषण के दौरान उन्होंने घोषणा की कि एक नई पत्रिका निकाली जा रही है जिसका नाम है स्वर्ण युग। फुटनोट, सन 1937 में स्वर्ण युग यानी द गोल्डन एज का नाम बदलकर सांत्वना यानी कंसोलेशन रखा गया। फिर 1946 में उसका नाम सजग होइए यानी अवेक रखा गया। फुटनोट समाप्त। इस पत्रिका में दुनिया में हो रही अहम घटनाओं की जानकारी दी जाती, साथ ही शास्त्र से समझाया जाता कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। सभी बाइबल विद्यार्थियों को बढ़ावा दिया गया कि वो इस नई पत्रिका का इस्तेमाल करके हिम्मत के साथ प्रचार करें। एक खत में बताया गया था कि प्रचार काम कैसे संगठित किया जाएगा। उसमें ये भी लिखा था, हर पवित्र जन यानी बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये सेवा एक विशेषाधिकार है। हमें इस सुअवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए और दुनिया को गवाही देने के लिए जितना बन पड़ता है उतना करना चाहिए। इस काम में हाथ बटाने के लिए बहुत से लोग आगे आए, उन्होंने जोश के साथ प्रचार किया और दिसंबर तक लोगों ने इस नई पत्रिका के 50,000 से भी ज्यादा अभिदान किए थे। सन 1919 के आखिर तक यहुआ के लोग दोबारा संगठित किए गए और परमेश्वर का काम करने के लिए उनमें फिर से जोश भराया। इसके अलावा आखिरी दिनों के बारे में बाइबल में बताई कई भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी थीं, जैसे परमेश्वर के लोगों को परखा और शुद्ध किया गया, जिसकी भविष्यवाणी मलाकी 3:1-4 में की गई थी। उन्हें महानगरी बेबीलोन की कैद से छुड़ाया गया और फिर उनकी देखभाल के लिए यीशु ने विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास को ठहराया। मत्ती 24:45। अब बाइबल विद्यार्थी यहुआ का काम करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। लेख समाप्त।